नमस्कार भारत, तारीख 7 मार्च, दिन बुधवार, मैं हूं वात्सल्य राय। उत्तर कोरिया से बातचीत के मुद्दे पर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की सतर्क प्रतिक्रिया, बोले उम्मीद है सही रास्ते पर बढ़ेगी बात। त्रिपुरा से तमिलनाडु तक मूर्तियों पर चोट को लेकर राजनीति गर्म, लेनिन के बाद निशाने पर पेरियार।
पेरियार का जो प्रतिमा है वेल्लोर में, वो नष्ट करने की कोशिश की गई है, वहाँ 2 लोगों की गिरफ्तारी की हुई है।
और मिलवाएंगे 75 बरस की उम्र में कारोबार की दुनिया में दाखिल होकर मिसाल बनी पाकिस्तान की आंटी लूलू से।
इंसान यदि ना रखे तो जल्दी ही बैठ जाता। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिय सांगवान से। उत्तर कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को हटाने के लिए अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। ये बयान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति दफ्तर से जारी किया गया, जिनका आधिकारिक दल हाल ही में उत्तर कोरिया से लौटा है। उन्होंने वहां उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से भी मुलाकात की थी और बताया कि बातचीत के दौरान परमाणु हथियारों का मुद्दा भी उठा। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सतर्कता से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों से आ रहे बयान सकारात्मक हैं, लेकिन वे अभी देखेंगे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि ये एक झूठी उम्मीद भी हो सकती है। अमरीकी सरकार के आर्थिक सलाहकार गैरी कोन ने इस्तीफा दे दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार में अपनी सेवाएं देना उनके लिए गर्व की बात रही। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ लगाने के फैसले को लेकर नाराज थे, क्योंकि इससे व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंका है। हाल ही में कई बड़े अधिकारियों ने ट्रंप सरकार में इस्तीफा दिया है। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ऐसी जगह है जहां हर कोई रहना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार अधिकारी ने कहा है कि म्यांमार में अब भी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही है। अधिकारी एंड्रयू गिलमोर बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविरों का दौरा कर रहे हैं। अगस्त 2017 से लेकर अब तक तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश आ चुके हैं। एंड्रयू गिलमोर ने BBC को बताया,
आई फाउंड न्यू अराइवल्स Coming in from Myanmar in the last
पिछले कुछ दिनों में कई नए शरणार्थी इन शिविरों में आए हैं, जो साफ बता रहे हैं कि अब भी हत्या और बलात्कार रखाइन प्रांत में बरकरार हैं, और साथ ही वहां बचे रोहिंग्या मुसलमानों को भूखा मारा जा रहा है ताकि वो वहां से भागने पर मजबूर हो सकें। मानवाधिकार अधिकारी एंड्रयू गिलमोर के शब्द। ब्रिटिश पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस चीज ने पूर्व रूसी जासूस को गंभीर रूप से बीमार कर दिया। रविवार को पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल अचेत हालात में पाए गए थे। उनके साथ एक महिला भी गंभीर हालत में पाई गई। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों से मिली जानकारी के बाद इस बात की भी आशंका है कि कहीं इन लोगों को जहर तो नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों किसी अज्ञात पदार्थ के संपर्क में आने से गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। दोनों के शरीर पर किसी तरह के जख्म का कोई निशान नहीं है। इस मामले को पहले की घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जब एक पूर्व रूसी जासूस अलेक्जेंडर की रेडियो एक्टिव जहर देकर हत्या कर दी गई थी। रूसी अमरीकी इतिहासकार यूरी फ्लिश्तनिस्की ने BBC को बताया कि इन घटनाओं में एक समानता नजर आती है। उन्होंने कहा, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और पहले जैसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जहां रूस की स्पेशल सर्विस का व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो रूसी स्पेशल सर्विस के लिए खतरा हो, उसे जहर दे दिया जाता है। लोगों को मारा जा रहा है। ये बार बार हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है दोषियों को सजा नहीं मिलती। इतिहासकार यूरी फ्लिश्तनिस्की के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। रूसी सेना का एक हवाई जहाज सीरिया में क्रैश हो गया, जिसमें 39 लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरिया में रूस के हिमिम एयरबेस पर जहाज के उतरते हुए यह दुर्घटना हुई। रूस के अधिकारियों ने पहले कहा था कि यह किसी दुश्मन के हमले की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन बाद में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 2 महीने पहले भी हिमिम एयरबेस विद्रोहियों के हमले का शिकार हुआ है, जिसमें 2 रूसी सैनिकों की मौत हो गई थी और बेस के कई जहाजों को नुकसान पहुंचा था। श्रीलंका के शहर कैंडी में सेना की टुकड़ियों को बढ़ाया जा रहा है। दरअसल मस्जिदों और मुसलमानों की दुकानों पर बौद्धों के सिलसिलेवार हमले के बाद श्रीलंका की सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया। कैंडी शहर में हिंसा भड़कने के बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था, लेकिन लोगों की भीड़ कर्फ्यू का उल्लंघन कर रही है। पिछले हफ्ते की ही श्रीलंका के पूर्वी शहर अम्पारा में मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई थी। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बातचीत की मेज पर आने की संभावना बन रही है। उत्तर कोरिया के दौरे पर गए दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल की ओर से आ रही खबरें यही इशारा करती हैं। लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसी किसी संभावना को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अब तक आए बयान सकारात्मक हैं, लेकिन हो सकता है कि उम्मीद झूठी निकले। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सर्वप्रिया सांगवान।
दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दल ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात के बाद जानकारी दी कि उनकी बैठक में परमाणु हथियारों का मुद्दा भी उठा। मंगलवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति दफ्तर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियार हटाने की इच्छा जताई है। उत्तर कोरिया का कहना है कि अगर उस पर सैन्य कार्रवाई का खतरा कम हुआ और सरकार बने रहने की गारंटी दी गई, तो परमाणु हथियारों को बनाए रखने की उसे कोई वजह नजर नहीं आती। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया से आ रहे बयान काफी सकारात्मक हैं, लेकिन अमेरिका किसी भी रास्ते पर जाने को तैयार है।
I'd like to be optimistic, but I think maybe this has gone further than anyone's taken it before.
हम देखेंगे। वे सकारात्मक तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे। मैं भी सकारात्मक होना चाहता हूं, लेकिन हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां अभी तक कोई सरकार नहीं पहुंची थी, तो इस स्थिति में अभी तक कोई नहीं आया है। हम इस मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम शांति के रास्ते पर बढ़ेंगे। जिसकी भी जरूरत होगी, हम उस रास्ते पर जाने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत अच्छी हो रही है और आप लोगों को जल्द पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हमने इस मामले में प्रगति की है, इस पर तो सवाल ही नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट के जरिए चेतावनी भी दी थी कि ये एक झूठी उम्मीद भी हो सकती है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि उत्तर कोरिया के साथ बातचीत चाहे जिस दिशा में जाए, हमारा निश्चय दृढ़ है। सभी विकल्प मौजूद हैं और हमारा रुख उत्तर कोरिया के लिए तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम उनका परमाणु कार्यक्रमों को बंद करने की तरफ कोई ठोस कदम ना देख लें। इस मामले पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चंग युआई सन ने बताया कि उत्तर कोरिया ने साफ तौर पर परमाणु हथियारों को हटाने को लेकर सहमति दिखाई है। उत्तर कोरिया ने इच्छा जताई है कि वह कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को हटाने को लेकर अमेरिका से बातचीत के लिए राजी है और साथ ही दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भी। चंग युआई सन के शब्द। हालांकि आलोचक उत्तर कोरिया की मंशा पर शक जताते हैं। पूर्व में उत्तर कोरिया से हुई बातचीत में कुछ हासिल नहीं हुआ है। अमरीका और उत्तर कोरिया के कुछ अधिकारियों की राय है कि उत्तर कोरिया इसके जरिए हथियार विकसित करने के कार्यक्रम के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश में हो सकता है। ये कड़े प्रतिबंधों से राहत पाने की भी कोशिश हो सकती है। इस बीच दक्षिण कोरिया की ओर से उत्तर कोरिया गए प्रतिनिधिमंडल के नेता चुंग यू यंग ने जानकारी दी कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के नेता अगले महीने एक शिखर सम्मेलन में मिलने के लिए सहमत हुए हैं। पिछले एक दशक में ये ऐसी पहली मीटिंग होगी।
उम्मीद है और आशंका भी है। रिपोर्ट सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान। उधर भारत के पड़ोसी श्रीलंका में हालिया दिनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में इजाफा हुआ है। इसे लेकर देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। कैंडी शहर में कर्फ्यू लागू है। श्रीलंका में आखिर मुसलमान निशाने पर क्यों आ गए हैं, जानते हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद की इस रिपोर्ट में।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा द्वीप देश श्रीलंका हमेशा से चर्चा में रहा है। मुसलमानों और मस्जिदों पर हमले के बाद वहां आपातकाल लागू कर दिया गया है। 2009 में चरमपंथी संगठन LTTE के खात्मे के बाद लगने लगा था कि इस देश में पूरी तरह शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन अब यहां बौद्ध बनाम मुस्लिमों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। श्रीलंका में बौद्धों और मुस्लिमों के बीच हालिया तनाव कैंडी शहर से उपजा है। इसकी वजह एक ट्रैफिक सिग्नल से शुरू हुई थी। कहा जा रहा है कि कुछ सप्ताह पहले कुछ मुस्लिमों ने एक बौद्ध सिंगली व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसकी प्रतिक्रिया में सोमवार को सिंगला बौद्धों ने मुस्लिमों की दुकानों को जला दिया और मंगलवार को एक मुस्लिम युवक की जली हुई लाश पाई गई। हालिया हिंसा की क्या वजह है? इस सवाल के जवाब में दक्षिण एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनी BBC से कहते हैं,
देखिए टेंशन्स तो हमेशा से रहे हैं। आप इस बात को मत भूलिए कि मुस्लिम्स भी तमिल हैं, तमिल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। LTTE के साथ वो नहीं थे कभी भी, लेकिन फिर भी वो तमिल समुदाय के हिस्से माने जाते हैं। भी वहाँ हालांकि इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस में पोलराइजेशन था, खास तौर से राजपक्षे की तरफ से ये पोलराइजेशन था कि एलटीटी का खतरा भी है और सिंगला वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने सिंगला साइकी को बहुत बढ़ावा दिया हुआ था।
श्रीलंका में बीते महीने निकाय चुनाव हुए थे। इन चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के दल को अभूतपूर्व जीत मिली थी। इस समय श्रीलंका में राष्ट्रपति सिरिसेना और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के दलों की गठबंधन सरकार है। हालिया तनाव के लिए एसडी मुनि गठबंधन सरकार के बीच रस्साकशी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं।
सरकार में काफी सारी रस्साकशी और खींचातानी चल रही है, तो हो सकता है कि जो सरकार के विरोधी तत्व है वो सिचुएशन को पोलराइज करके इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करें।
पूर्व राजनयिक राकेश सूद भी मुनि की बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि राष्ट्रपति सिरिसेना और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के बीच मनमुटाव दिखाई दिया है और उन्होंने चुनावों में एक साथ वैसी गर्मजोशी नहीं दिखाई।
मुझे लगता है कि ये जब एक तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर थोड़ी सी हिल जाती है तो उस माहौल में पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन जो है वो बढ़ता है।
ध्रुवीकरण की राजनीति श्रीलंका में कोई नई बात नहीं है। विक्रमसिंघे और सिरिसेना के बीच जब गठबंधन हुआ था तो दोनों ने सबको साथ लेकर चलने की राजनीति पर विश्वास जताया था, लेकिन श्रीलंका में भी वोट बैंक की राजनीति होती रही है। मुनि बताते हैं कि स्थानीय चुनावों में तमिलों और मुस्लिमों ने अलग वोट दिया और सिंघलियों ने अलग वोट।
जो राजापक्षा के फेवर में वोट आए हैं वो सारे सिंघली वोट एक तरह से आए हैं, और दूसरी तरफ जो एक मेल मिलाप की राजनीति जो रेनिल विक्रमसिंघे कर रहे थे, चंद्रिका कुमार तुंगा ने करने की कोशिश की, उसको वोट नहीं मिले और तमिल दूसरी तरफ पोलराइज हो गए।
2.1 करोड़ की जनसंख्या वाले श्रीलंका में 70% से अधिक सिंगली, 12% तमिल हिंदू और तकरीबन 10% मुस्लिम हैं। एलटीटीई के समय से भारत श्रीलंका में शांति की कोशिशें करता रहा है। श्रीलंका के हालिया मामले में भारत क्या कर सकता है, इस पर राकेश सूद कहते हैं,
भारत का रवैया यही होना चाहिए कि हम कहें कि देखिए आप लोग इसको सुलझाइए और इसको पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन, बुद्धिस्ट मुस्लिम पोलराइजेशन, उस तरह का जो एक रंग है उसको उस रंग में मत जाने दीजिए।
श्रीलंका में बौद्ध बनाम मुस्लिम हिंसा पहली बार नहीं हुई है। इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी और इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से मुसलमानों और उनके व्यवसायों को निशाना बनाया जाता रहा है। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
श्रीलंका के बाद बात पाकिस्तान और नेपाल की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी नेपाल के 2 दिन के दौरे पर थे। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद वो इस देश का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता थे। इस दौरे में दोनों देशों को क्या हासिल हुआ और क्या इन दोनों ने भारत को भी कोई संदेश देने की कोशिश की? बीबीसी संवाददाता कमलेश मठेनी ने नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे से यही सवाल किया।
एक तो सामान्य प्रैक्टिस नहीं है कि किसी नए प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए कोई दूसरा देश का प्रधानमंत्री नेपाल आए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए और नेपाल के साथ विविध तरह के संबंध बढ़ाने के लिए वो यहाँ आए हैं। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ क्षेत्रीय मामला, जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहायक संगठन सार्क है, उसको सक्रिय बनाने के लिए भी का एक लॉबिंग के लिए वो आए थे, ऐसा लग रहा है।
जैसे कि भारत पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो दोनों देशों की नजर रहती है एक दूसरे की गतिविधियों पर, तो इस पूरे दौरे पर भारत की भी नजरें थी, तो भारत के नजरिए से इसे कैसे देखा जाए?
भारत, एक चीज तो ये है कि नेपाल और पाकिस्तान की जो रिलेशन है ये इंडिपेंडेंटली देखा जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल का अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हालांकि नेपाल का ये घोषित नीति है कि भारत के संवेदनशील विषय प्रति वो हमेशा सकारात्मक रहता है, लेकिन इसके साथ साथ नेपाल किसी और पड़ोसी के साथ या क्षेत्रीय मुल्क के साथ या विश्व के किसी देश के साथ अपना संबंध इंडिपेंडेंटली परस्यू करता आ रहा है, ये उसी का मिसाल है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की इनिशिएटिव पर हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप में कोई प्रधानमंत्री नेपाल आना चाहे तो नेपाल स्वागत करेगा।
क्या इसमें भारत के लिए भी कोई संदेश छुपा हुआ है इस दौरे के अंदर?
जरूर, क्योंकि एक तो पाकिस्तान चाइना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक अलाई है और ये अलाइंस जो अभी बदला हुआ समीकरण है, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए, जो मैंने बोला कि ये स्वाभाविक भ्रमण नहीं है। दूसरा, सार्क में इंडिया का रोल थोड़ा दूसरा है, क्योंकि ये समिट जेंडून नहीं हो पा रहा है। ऐसा नेपाल के साथ, पाकिस्तान ने ये कहा कि नेपाल को साथ देने, क्योंकि नेपाल प्रेजेंटली चेयर करता है सार्क को, इसलिए नेक्स्ट समिट के लिए उसको सक्रिय भूमिका खेलना चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री केपी ओली और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का एक मत था। तीसरा, क्या जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसमें पाकिस्तान नेपाल दोनों ने हस्ताक्षर किया है, इसलिए भी शायद ये मैसेज देने के लिए कि डेवलपमेंट का दूसरा डायमेंशन को भी शायद हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली ये भी मैसेज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है।
ये थे नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे। और अब बात भारत की। भारत में त्रिपुरा से लेकर तमिलनाडु तक अचानक मूर्तियों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति को निशाना बनाए जाने की खबर आई तो कल देर शाम तमिलनाडु के वेल्लूर में पेरियार की मूर्ति पर हमले की जानकारी मिली। पूरे मामले पर अपडेट के लिए मैंने देर रात इमरान कुरैशी से बात की।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता तमिलनाडु के एच राजा ने एक फेसबुक पे उनका एक पोस्ट लिखा था, ये कहते हुए कि अगर त्रिपुरा में लेनिन की जो प्रतिमा को नष्ट किया गया, उसी तरह तमिलनाडु में पेरियार की जो प्रतिमा है उसको भी इसी तरह नष्ट करना चाहिए। इस पे बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया तमिलनाडु में, क्योंकि पेरियार रामस्वामी नायकर एक तमिलनाडु के राजनीति में उनको एक भगवान का स्थान उस तरीके से देखते हैं लोग। वो द्रविड़ा कलगम जो सबसे पहले जो उन्होंने शुरू किया, उसी से सीएन अन्नादुरे और करुणानिधि जैसे नेता डीएमके ने शुरू किया। पिछले 60 साल से तमिलनाडु की राजनीति में पेरियार का एक स्थान है, जो शायद लेनिन जैसे नेता रशिया में जैसे थे, उसी तरह पेरियार का स्थान है तमिलनाडु में।
विवाद होने के बाद एच राजा ने अपना पोस्ट तो डिलीट कर दिया, लेकिन क्या इस पर अब भी बहस जारी है?
चल रही है बहस, सोशल मीडिया पे तो बहुत बवाल मचा है। सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा जो पेरियार का जो प्रतिमा है वेल्लूर में, वो उस प्रतिमा को नष्ट करने की कोशिश की गई है। प्रतिमा को बहुत डैमेज हुआ है, तो उसके वजह से वहाँ दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।
तो राजनीतिक हलकों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कोई आधिकारिक रूप से इसके बाद बयान आया है?
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ खास बयान नहीं आया है। राज्य के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने राजा के बयान के खिलाफ एक बयान दिए हैं, मगर जो तोड़फोड़ हुई है पेरियार के जो प्रतिमा को वेल्लोर में, उससे ऐसा लग रहा है कि वो शायद वहीं नहीं रुकेगा।
जी, दूसरे राजनीतिक दल क्या कुछ कह रहे हैं?
तमिलनाडु में कोई पक्ष नहीं है जिन्होंने इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं स्पष्ट की है। एच राजा को और बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए गए हैं और सोशल मीडिया में तो बवाल मचा है।
जानकारी दे रहे थे इमरान कुरैशी। उधर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें त्रिपुरा के बेलोनिया शहर में लेनिन की एक प्रतिमा को जेसीबी मशीन से गिराते हुए देखा जा सकता है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने बेलोनिया के नवनिर्वाचित विधायक अरुण चंद्र भौमिक से इस मुद्दे पर बात की, सुनिए उनका क्या कहना है।
Remarks, Lenin, that is rejected throughout the world, save and except China. You see him in the
बीजेपी के विधायक अरुण चंद्र भौमिक कह रहे हैं कि चीन के सिवाय मार्क्स और लेनिन पूरी दुनिया से खारिज किए जा चुके हैं। कुछ वक्त बाद आप उन्हें चिड़ियाघर में देखेंगे, किताबों से भी उन्हें हटाया जाएगा। अब उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उनकी मूर्ति लगाना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसीलिए शायद उन्होंने इसे तोड़ा होगा। मेरी पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्थानीय नेता शांतनु दास ने भी दावा किया कि उनकी पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं है।
ये बिल्कुल झूठा आरोप है। उस दिन ऐसा हुआ था कि बीजेपी के खुशी में हम लोग रैली कर रहे थे, हम लोग का कार्यकर्ता वहाँ था भी नहीं। 25 साल बाद हमारा सरकार बना है यहाँ त्रिपुरा में, सीपीएम वालों को देखा नहीं गया है। तो सीपीएम वालों का ही कैडर ने बीजेपी का टी शर्ट पहन के झंडा लेके और लेनिन का मूर्ति तोड़ा है। और ये जो बुलडोजर का बात किया जा रहा है जिससे तोड़ा गया है, हम लोगों को खबर मिला है कि इनका जो मालिक है वो भी सीपीएम कैडर ही है। हालांकि जो सच बात है उसको हम पुलिस प्रशासन को बोले हैं, उसमें कार्रवाई करे और ढूंढ के निकाले कौन आरोपी है।
ये थे शांतनु दास। उधर सीपीएम के नेता और कार्यकर्ता इस घटना के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बात गोवा की राजनीति की। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर राज्य की गठबंधन सरकार की धुरी माने जाते हैं। हाल में उपचार के लिए पर्रिकर ने छुट्टी ली तो विपक्ष नई संभावनाएं तलाशने में जुट गया। क्या गोवा में पर्रिकर ही भारतीय जनता पार्टी के पर्याय हैं? हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने गोवा के वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभु देसाई से यही सवाल किया।
अहम तो है, क्योंकि जब 2017 इलेक्शन जो हुई विधानसभा की, कि वहां हंग असेंबली बनी और किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तो इस सिचुएशन में यहाँ जो बाकी पक्ष के महाराष्ट्रवादी गोवंदक पार्टी के 3 विधायक और गोवा फॉरवर्ड के 3 विधायक और बाकी जो विपक्ष में थे, उन्होंने ये भाजपा की सरकार, भाजपा की गठबंधन सरकार को समर्थन दिया सिर्फ मनोहर पर्रिकर चीफ मिनिस्टर रहे तो ही। समर्थन मनोहर पर्रिकर को था, भाजपा को नहीं था। तो अभी मनोहर पर्रिकर यहाँ से हट गए तो सरकार गिर भी सकती है, दूसरी सरकार बन सकती है, कांग्रेस के साथ सरकार बन सकती है, ऐसी सब परिस्थितियां हैं।
मतलब अगर पर्रिकर गोवा की पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक मौका रहेगा?
ये तो मौका हो सकता है, मिल सकता है कांग्रेस को सरकार बनाने की, क्योंकि अभी सरकार के बाजू में 40 विधायकों की विधानसभा है, उसमें 14 विधायक है भाजपा के, 3 महाराष्ट्रवादी गोवंतक पार्टी, 3 गोवा फॉरवर्ड और 2 विपक्ष, यानी 22 लोगों की अभी सरकार है, गठबंधन सरकार। और कांग्रेस के है 16, 1 राष्ट्रवादी के है, 1 विपक्ष है, जो सरकार में नहीं है, मंत्रीगण नहीं है, वो बनते हैं 18। तो ये 18 जो है उनमें से ये सरकार की जो गठबंधन सरकार है उसमें से 3 लोग भी ये बाजू में आ गए, एक भी कोई महाराष्ट्रवादी गोवंदक पार्टी के 3 और गोवा फॉरवर्ड के 3, उनमें से कोई भी एक दूसरी बाजू में आ गया तो कांग्रेस भी सरकार बना सकती है। लेकिन अभी तक तो ऐसी परिस्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर अभी भी मुख्यमंत्री हैं और वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि 6 वीक्स यानी 6 वीक्स वो गोवा के बाहर रहेंगे। इसलिए उन्होंने तीनों पक्षों की, भाजपा, गोवा फॉरवर्ड और महाराष्ट्रवादी गोमंतक, तीनों पक्षों के लीडर्स की एक समिति बनाई है और वो समिति सरकार बन के काम करेगी। तो अभी तो वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन ये हो सकता है।
ये क्या वजह आप देखते हैं कि पर्रिकर जो है एक धुरी है गोवा की राजनीति की, बीजेपी की राजनीति की, क्या कारण है इसके?
देखो, एक तो है मनोहर पर्रिकर जो है वो बहुत कार्यक्षम मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसके पहले भी, आज भी, और ये तो पहला कारण है, क्योंकि वो सब गठबंधन के जो बाकी पक्ष है उनको साथ लेके वो जा सकते हैं। ऐसा कोई दूसरा नेता इतना ऊंचाई का भाजपा में भी नहीं है, यानी मनोहर पर्रिकर गए तो दूसरा कोई कौन बनेगा दूसरा मुख्यमंत्री, इसके लिए भी कोई उम्मीदवार भाजपा के पास नहीं है। इसके ऊपर चर्चा होती है कि मनोहर पर्रिकर ज्यादा दिन बीमार रहे तो दूसरी मुख्यमंत्री लाएंगे, तो कोई कौन लाएंगे।
ये थे संदेश प्रभुदेसाई। और अब सरप्रिया से जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है, वो मौजूद है सारे अखबारों के साथ।
वात्सल्य, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि जो केंद्र सरकार है उसने आधार के लिए जो डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च उससे वो आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता को लेकर एक सुनवाई चल रही है और उसी एक सुनवाई के दौरान सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बात कही है कि अगर 31 मार्च तक आधार पर कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो आधार के साथ जो लिंक करने की समय सीमा दी गई है 31 मार्च
जी, बैंक खाते और बाकी जगह,
जी हाँ, उसको आगे बढ़ाने की सरकार सोच सकती है,
यानी एक और राहत मिल सकती है लोगों को आधार के मामले में
जी। और जो दूसरी खबर है, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर सबसे टॉप पर एक खबर छपी है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लेनिन की मूर्ति ढाए जाने को लेकर त्रिपुरा के गवर्नर और डीजीपी से बात की है और उन्हें कहा है कि आप शांति सुनिश्चित करें। तो ये एक बड़ी गंभीर बात हुई कि एक संवैधानिक पद पर बैठे एक गवर्नर ने, जो तथागत रॉय, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने इस मूर्ति ढाए जाने का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया था कि अगर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार कोई काम कर सकती है तो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार उस काम को नष्ट भी कर सकती है, मतलब अनडू कर सकती है
जी।
और ये जो राजनाथ सिंह ने जो उन्हें ये सब बात की उन लोगों से, उसी बीच में एक जो खबर हमने अभी पढ़ी की तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति को भी तोड़ दिया ही गया। तो तीसरी खबर है वो थोड़ी सी लगता है कि प्रधानमंत्री का जो पकौड़े वाला बयान था वो बड़ा ही राष्ट्रीय चुटकुला बन गया है और उसमें हिंदू ने एक खबर छापी है कि हरियाणा के कांग्रेस विधायकों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पकौड़े बेचे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर आए और उन्होंने विधायकों के से पकौड़े खरीद कर बकायदा ये फोटो छपी है अखबार में, खरीदे और खाए, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आजकल बेरोजगार हैं और कोई काम नहीं है, तो उनके पकौड़े खरीद कर उन्हें रोजगार दे रहा हूं।
बहुत शुक्रिया सरप्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक खास रिपोर्ट, पाकिस्तान की 75 साल की कारोबारी महिला के बारे में ये रिपोर्ट है। ये महिला तमाम लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आई है। क्या है उनकी खूबियाँ, जानते हैं सबा रहमत की इस रिपोर्ट में जो उन्होंने कराची से भेजी है।
दुनिया में आजकल कोशिश तो हर नौजवान की कम उम्र में ही नए नए कारोबार शुरू करने की होती है, लेकिन कराची की आंटी लुलू ने तो 75 साल की उम्र में जाकर रवायती हैदराबादी खानों का एक ऐसा कारोबार शुरू किया है जिससे लोग हाथों की उंगलियां चाटने पर मजबूर हैं। ये आंटी लुलू मुनफरिद नाम ही था जो हमें इनके कराची में कायम नए रेस्टोरेंट की जानिब खींच लाया, लिहाजा पहले तो हमने इनसे इनके इस मुनफरिद नाम का मतलब ही पूछा, तो आंटी लुलू ने बताया।
लुलू का मतलब कुरान शरीफ में है, लुलू सूरे रहमान में इसका मतलब है मोती, पर लुलू अल मरजान।
अबाओ अजदाद का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था और पाको हिंद की तकसीम के वक्त वो एक साल की थी जब पाकिस्तान मुंतकिल हुई।
पली बड़ी सब यहाँ, ताल्लुक तो हैदराबाद दक्कन से था, मगर पूरा पक्की पाकिस्तानी हूँ। मैं बच्ची थी, बहुत क्लास वन में थी, ट्यूशन में जाती थी, स्कूल में भी जाती थी, मतलब इट वाज माय हॉबी, शौक से पढ़ाती थी मैं।
तकरीबन 40 साल स्कूल में तदरीस का काम किया और रिटायरमेंट के बाद खाने पकाने के शौक को कुल वक्ती तवज्जो देना शुरू की।
टीचिंग छोड़ दी, मैं घर में बनाती थी चीजें, स्कूल के मेरे फ्रेंड्स और ये वो मेरा फूड बहुत पसंद करते थे, तो इवन मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो भी कहते थे आंटी आप क्यों नहीं करते कुकिंग, क्यों नहीं करते, तो मैं एक दो हेल्पर है, मैंने शुरू किया। मैंने तो उसमें मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जब भी मेरा बेटा कहता था कि भाई जरा ड्राइवर की जरूरत हो, तो मैं कहती थी मेरे ड्राइवर डिलीवरी करने गए, तो क्या डिलीवर करें क्या, तो आई सेड आई एम डूइंग दिस।
हैरान कुन बात ये भी थी कि जब हमने ये जानना चाहा कि ऐसे मजेदार पकवान बनाने का हुनर उन्होंने कहाँ से सीखा, तो मालूम हुआ उन्होंने ये सब अपने तजर्बे से सीखा।
खुद तजर्बे से बनाया मैंने, और मेरे इसमें मेरी वालदा का बहुत हाथ था, तो वो कहते थे कि सब कुछ जब खाते हो तो आता भी होगा पकाना।
अपने ही नाम से शुरू करदा आंटी लुलू के बाजाबता कारोबार को महज 5 माह का वक्त ही गुजरा है। इनके खानों के बारे में इनके एक बाकायदा खरीदार फराज ने बताया कि जायके के साथ साथ हिफ्जान सेहत की वजह से वो इनके खानों को तरजीह देते हैं।
हैदराबाद भी टेस्ट सही है, इसमें साफ सुथरा भी है और जरा हट के है ये, वो बल्कि ऑर्डर पे हम करवाते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं, ये आराम से आंख बंद करके बच्चे को खिला सकते हैं, फैमिली को खिला सकते हैं।
आंटी लुलू का फेसबुक पेज भी है जहां आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। तकरीबन 6 लोगों पर मुश्तमिल अमले के साथ काम करती हैं और इस बात पर यकीन रखती हैं कि पैसे के साथ इंसानों को खरीदा नहीं जा सकता।
मैं अपने नौकरों को आई एम सॉरी पैसे से तो कभी नहीं खरीदती, बट दे विल नॉट गो। अगर उनको अच्छा बड़ा ऑफर भी मिला है तो अभी तक तो माशाल्लाह नहीं गए, अल्लाह ऐसे रखे, पता नहीं होता, मगर वो कभी नहीं छोड़ते मेरे को। उनको ऑफर भी मिला मगर वो नहीं गए। इज्जत देते ना आप नौकरों को, अगर आपका नौकर काम करे तो भी इंसान है ना, आप उनको इज्जत दो वो आपको इज्जत देंगे।
आंटी लुलू ने इस उम्र में कारोबार के आगाज से साबित कर दिया कि मुतहरिक जिंदगी गुजारने का फन यही है कि कभी भी उम्र इसके आड़े ना आए।
औरतें अगर अपने आप को बिजी ना रखे, कोई भी हो इंसान बिजी ना रखे तो जल्दी ही बैठ जाता है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए।
सबा रहमत की इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर साझा करें। और आपको बता दें कि कल कोलंबो में खेले गए 2020 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया से।
उत्तर कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को हटाने को लेकर अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी सरकार के आर्थिक सलाहकार गैरी कोन ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसी खबरें हैं कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ लगाने के फैसले से नाराज थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार अधिकारी ने कहा है कि म्यांमार में अब भी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही है। रूसी सेना का एक हवाई जहाज सीरिया में क्रैश हो गया जिसमें 39 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी दीपक जसरोटिया के हाथ, फेसबुक प्रसारण में मदद की भूमिका राय ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।